आगे है रुकू नंबर 14, 130 से 143। मुसलमानों का उरूज ईमान से मशरूत है, और आपको एक बड़ी प्यारी सी पुकार है आपके रब की एक बार फिर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफ़म मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें निजात मिले, और इस आग से डर जाओ जो कुफार के लिए तैयार की गई। क्या पता चला कि गज़वाए ओहद में माल की मोहब्बत में लोगों ने जगह छोड़ी थी ना, फिर चोट पड़ी, फिर रोए होंगे, धोए होंगे। अल्लाह ने लोहा गरम देखकर बात कर दी कि सूद ना खाओ। ये दूसरा मुकाम है कुरान में, अगर आप नोट करें, जहां सूद का तذکرہ है। क्या करो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिस कार्ज आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई। नोट किया आपने? बस सारी इला मग़फ़िरतिन। दूसरे पारे में क्या था? फ़स्तबिकुल खैरात, भागो दौड़ करो। तीसरे पारे में क्या आया था? याद कीजिए, फ़स्तबिकुल खैरात के साथ नेकियों की तरफ आओ, भागो। और अल्लाह आपको सुस्तियों से बचाना चाहता है, और ये जन्नतियों की खूबियां भी इसमें बता दी गई कि ये जन्नत कौन सी है जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई। वो कौन होते हैं? अब जरा उंगलियों पे इनकी खूबियां गिन लीजिए। जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। जब इनसे कोई नाशायस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिल वाक़े अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को बख्श सकता है? कोई भी नहीं। ये इसका जवाब है। और जो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते, इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मग़फ़रत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और इन नेक कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके, बस ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि आसमानी तालीम के झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है, और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत। तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। नोट कीजिए, ईमान के साथ गलबा लिखा गया। अगर तुम जख्मी हुए तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम दिनों को लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। शिकस्ते ओहद इसलिए थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, ये भी वजह थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और कुफार को मिटा दे। अम हसिब तुम, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी तक अल्लाह ताला ने ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। यानी आजमाइशों की छलनी से गुजरोगे छन छन के, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे, अब इसे अपनी आंखों से देख लिया। क्या पता चला कि अल्लाह ताला यहाँ सिर्फ हमें गज़वे उहद नहीं सिखा रहे, उससे मॉरल्स एंड लेसन्स दे रहे हैं। तो चार चीज़ें इस रुकू में आपको ईमान के मुतल्लिक दिखी। पहली 130 आयत आले इमरान की, क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा। क्या पता चला मैसेज क्या है इस आयत का? हराम खाना नेकी के जज्बे को खा जाता है। जिस पेट में हराम जाएगा वहां से हलाल नहीं निकलेगा, दिल ही नहीं करता नेकियां करने को। फिर आयत 139, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलाउन। कैसे? इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही हो, शर्त ईमान है। और 140 आले इमरान, व तिल्कल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास। लिख लें बड़ा बड़ा दिल की तख्ती पे, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आफियत है तो भाग के काम कर लें, आज सेहत है तो भाग भाग के करें। वही हदीस के, इख्तनिम खमसन कबला खम्स, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। और इधर क्या है? कोई बात नहीं, बदर में फतह हो गई थी ना, तो उहद में फतह नहीं हुई तो क्या हुआ? यहाँ वो थीम समझ लीजिए कि मोमिन फतह के लिए नहीं लड़ता वरना शिर्क हो जाएगा, वो तो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए लड़ता है। फिर आले इमरान 141, आजमाइशें मोमिन को निखारने के लिए आती हैं। आप फेशियल नहीं करवाते, स्टीमर से नहीं गुजरते, आप स्क्रब्स नहीं लगवाते, क्यों भला? पोर्स के अंदर से भी मैल निकल जाए भाई, माशाल्लाह। फिर आप उसको पॉलिशर लगवाते, आप उसके ऊपर मास्क लगवाते, तो ये आजमाइशों के मास्क, आजमाइशों के पॉलिशर, आजमाइशों के, ये कह लीजिए कि जो फेशियल्स है ना, ये क़यामत के दिन चेहरों को सफ़ेद करवा देंगे। फिर इसी तरह जंगी हालात की आजमाइशों का मकसद क्या है? कि मुसलमान आजमाए जाएं और उनको इस मकसद पे जमना आ जाए, हिम्मत ना हारें, शहादत मिले तो दर्जात की बुलंदी का सबब हो, और अल्लाह ताला ईमान वालों को खालिस मोमिन बना दे। और फेथ इन एक्शन के पॉइंट के, कि सूदी लेन देन से बचना, सूद के मुकाबले में इन्फाक को फ़रोग देना, कुरान से हिदायत और नसीहत हासिल करनी है, जन्नत हासिल करने के लिए शरीयत पर अमल करना है, और जन्नत इज़ ऑन सेल, लिख के रख लीजिए, बाय वन गेट वन फ्री। अल्लाह ने इन आयात में आपको मुझे क्या कहा, वह सारी विला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन। एक जुमला लिखिए, दुनिया में आपको एक धोखा दिया जाता है, पैसे एक के दें दूसरी फ्री ले जाएं, क्योंकि वो पहले में से ही दूसरे के भी पैसे ले चुके हैं, आप तो वो सिर्फ क्लियरेंस कर रहे हैं। आप जब सिर्फ दुनिया मांगेंगे ना, तो ये है विदाउट डील, दुनिया मिल गई तो मिल गई, ना मिली ना मिली। आप कहते नहीं मुझे आखरत लेनी है, तो आखरत के तलबगार को दुनिया फ्री में मिल जाती है, बाय आखिरा गेट दुनिया फ्री। देखिए केले खरीदते हैं ना, कभी आज तक किसी ने केले के छिलके खरीदे? तो केलों के साथ छिलके आते हैं, तो आखरत के साथ दुनिया आती है। अल्लाह आपको मुझे दुनिया की बजाय आखरत का तलबगार बना दे। आगे है जी रुकू नंबर 15, मौत का वक्त तय शुदा है, आयत 144 से 148, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह के नबी की मोहब्बत को महसूस करते हुए सुनिए, और वो दर्द महसूस कीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबाए कराम महसूस करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाएं, तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? देखिए अल्लाह नबी के बारे में क्या फरमा रहा है। और आज हमारे कई लोग कहते हैं अल्लाह के नबी के बारे में मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना आपके लिए गुस्ताखी है, कुरान ने तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अरबी में, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, और साथ ही कह दिया कि अगर वो मर जाएं या मार दिए जाएं, तो मौत एक हकीकत है, अल्लाह के सिवा तो हर जी रूह को मौत आने वाली है। तो जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर, तो हरगिज़ अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेगा, अन करीब अल्लाह शुक्र गुजारों को नेक बदला देगा। बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता, मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं, और आखरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे, और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफ़ें पहुँची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना सुस्त रहे और ना दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। इन खूबियों को हाईलाइट कीजिए और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह, जैसे नबी के साथियों में ये खूबियां थीं, आज इस नबी के दिए हुए दीन को फैलाने में हम सबको भी अल्लाह यही खूबियां अता कर दे। बेस्ट रूल्स हैं किसी टीम के अपने मुहासबे के लिए। क्या कहते थे, जुबान पे दुआएं थी, किरदार खूबसूरत हो, कोशिश पूरी हो, रूल्स को फॉलो किया जाए, फिर जो कमी रह जाए वो दुआओं से पूरी की जाए। यहाँ अल्लाह के नबियों के साथियों की दुआ क्या है, वो यही कहते रहे कि परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हुई उसे भी माफ़ फरमा, और हमें साबित कदमी अता फरमा, और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ये दुआ है आपने मैंने मांगनी है, आप सब भी मांगे, मैं भी मांगूंगी, गलती और कोताहियों से दरगुजर की दुआ। क्योंकि गज़वे अहद में एक गलती हुई, और आपको तो गलती करने वाले के दिल पर एक गिल्ट होता है। दुआ क्या है, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरीना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, आमीन। तो क्या सीखा, ईमान वालों की खसूसियात क्या, कि अच्छे साथियों के बगैर दीन का काम मुमकिन नहीं। देखिए, नबी हो या आज नबी के दीन को फैलाने वाले हो, उन सब को अंसार अल्लाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क। जो लोग अपने सेल्फ मेड, अपने आप को वन मैन शो करके दीन का काम करते हैं, उसके मतलूबा नताइज नहीं निकलते। फिर इसी तरह से ईमान वाला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही नहीं, बल्कि उनके मिशन से भी मोहब्बत करता है। लिखिए, नबी की ज़ात के साथ साथ उनकी बात से भी मोहब्बत करनी है। और सहाबा ने इसका अमली सबूत दिया। मोमिन ना तो सुस्त पड़ता है, ना मुश्किलात में हिम्मत हारता है, और ना वो नेकियों पर गरूर करता है, बल्कि नेकी करने के बाद भी मगफरत तलब करता रहता है। अल्लाह हमारे अंदर ये खूबियाँ डाल दे। इसी तरह फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं? जिहाद फी सबीलिल्लाह से मुंह नहीं फेरना, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई तलब करनी है, बेसब्री और बेदिली के रवैये से इज्तनाब करना है, अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांगते रहना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक दे। आगे रुकू नंबर 16, 149 से 155। मौत का वक्त ही नहीं, जगह भी तयशुदा है, और एक प्यारी पुकार आपके प्यारे रब की आपके नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम कुफार की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे। फिर तुम ना मुराद हो जाओगे, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। हम अन करीब कुफार के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जबकि तुम इसके हुक्म से इन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की। इसके बाद कि इसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हें दिखा दी, तुम में से बास दुनिया चाहते थे और बास का इरादा आखरत का था, तो फिर इसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुमको आजमाए, और यकीनन इसने तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर फरमा दिया। और ईमान वालों पर अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह करे कि हमें ईमान मिल जाए, कि अल्लाह का साथ मिले। अब अगली आयतें सुनते वक्त आप एक तसव्वुर में लाइए मैदाने उहद को। आपको बिल्कुल अगली आयतों से ऐसे लगेगा जैसे आंखों देखा हाल, यानी हम अपने तसव्वुर की निगाह से देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे। देखिए, एक्शंस तक अल्लाह ने नोट करके दे दिए दर्रा छोड़ने वालों के। इससे पता चलता है कि कभी कभी गलतियों को हाईलाइट करने से फ़ायदा ये होता है कि बंदा दोबारा वो काम नहीं करता। बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम फौतशुदा चीज़ पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ़ पर उदास हो। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। फिर इसने इस गम के बाद तुम पर अमन नाजिल फरमाया और तुम में से एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो लोग भी थे कि इन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी और वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे और कहते थे कि क्या हमें भी किसी चीज़ का इख्तियार है। आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते। ये नोट कीजिए, नबी को भी रोक दिया। क्या आप नहीं कह सकते कि ये क्यों नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ? तकदीर का मौजू सुना है पिछले पारे के एंड पे? जो होना है होना है, अल्लाह ही चाहे तो उसको रोके, नबी नहीं रोक सकता। जिसको हिदायत मिलनी है, नबी के कहने से हिदायत किसी की रुकेगी नहीं। यानी एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करके ये खूबसूरत पैगाम दिया गया। कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। आप कह दीजिए, गो तुम अपने घरों में भी होते, फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज़ों का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको पाक करना था, और अल्लाह ताला सीनों के भेद से आगाह है। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों की मुठभेड़ हुई, ये लोग अपने बास करतूतों के बायस शैतान के फिसलाने में आ गए, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। कितनी खूबियां मेरे रब में। ईमान से मुतल्लिक दो आयतें इस हिस्से में, 149 आले इमरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। कैसी प्यारी तसल्ली अल्लाह ने दी कि अगर तुम कुफार की दोस्ती करोगे तो ये तुम्हें इस्लाम से, तुम्हारे ईमान से फेर देंगे, आपके ईमान के दुश्मन। अगर कोई आपसे कि आपके फ़ोन का कोई दुश्मन है, आपके कंप्यूटर का कोई दुश्मन है, आपकी गाड़ी का कोई दुश्मन है, क्या अब ज़्यादा चोट उस पर पड़ती है या ईमान दुश्मनी पे? आज हम गैरों से दोस्तियाँ करते हैं, और कई लोग जो अल्लाह और अल्लाह के दीन के मुखालिफ, लेकिन वो इंसानियत के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं। तो जुमला लिख लीजिए, इंसान दोस्ती अच्छी है मगर इंसान परस्ती नहीं। आज ये लोग ह्यूमैनिटी के नाम पे कई दफ़ा ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि जो नहीं करने वाले। फिर आगे आयत 152 आल इमरान, वलकद अफा अनकुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन। इससे पता चलता है कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। अगर ज़िंदगी में कोई आजमाइश आ जाए तो उसके ऊपर झांक के देखिए, कोई ना कोई अल्लाह ने आपको खैर देनी होगी। फेथ इन एक्शन के पॉइंट्स, कुफार की मरूबियत में अल्लाह की इताअत से नहीं हटना, अल्लाह ताला की नाफरमानी दुनिया और आखिरत की नाकामी का सबब होगी। आजमाइशों में अपने जौहर को पहचानना है। आप देखते हैं कि जब आजमाइश आती है या मुश्किल हालात आते हैं तो हमारी अंदर की सलाहियतें भी खुल जाती हैं ना। तो जब भी आजमाइशें आती हैं ना, बंदा घबरा जाता है, लेकिन कम अज़ कम उसे अंदर से खैर निकलती है। कहते हैं कि जलजलों के बाद अंदर से माइंस निकल आते हैं। सैलाब आता है तो वो ऊपर से मट्टी उतारता है तो नीचे से जरखेज़ मट्टी निकल आती है। तो कभी ज़िंदगी में अगर आप स्टक्ड हैं तो डोंट वरी, अल्लाह इज़ विद यू। क्या सीखा? फेथ इन एक्शन। फतह को शिकस्त में बदलने वाले अवामिल कौन से हैं? किसी काम के करने के दौरान डिसिप्लिन को बरकरार ना रखना, चाहे ये शादी ही क्यों ना हो। दीन और दीनदारी की बातों को तो एक साइड पे कर दीजिए। फिर अमीर की इताअत ना करना, यानी जो आप पे बड़ा है, जो आपका उस वक़्त का जिम्मेदार है, उलुल अम्र है, उसकी बात ना मानना, और असूल और जवाबित की परवाह ना करना। अल्लाह हमें डिसऑर्गनाइजेशन से बचाए। आज आपको तहमत मुस्लिमा का पौधा क्यों नहीं पनप रहा कई जगहों पे? इतने इखलास के बावजूद, इतना माल लगाने के बावजूद, इतना रिसोर्सफुल होने के बावजूद, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं। गोरे कोई काम करते हैं उसको पहले नाप तोल के रख के कर करा के वो काम करते हैं, लेकिन हम मुसलमानों में ये चीज़ों की कमी है। आपको पता है कि यहाँ का तो मुझे रूल ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन नॉर्वे में रात 8 बजे के बाद कोई गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा सकता। नेबरहुड, यानी आपका घर है, दूसरा है, कोई अपने घर के बाहर लाइटें नहीं जला सकता, क्योंकि शायद आपके पड़ोस में कोई बूढ़ा बंदा सो रहा हो। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वहाँ अक्सर घर बनाने के लिए डायनामाइट के साथ पहाड़ियों को तोड़ते हैं। तो अगर कोई घर बनना है और उसके अंदर से कुछ पहाड़ तोड़ना है, पूरी कम्युनिटी को ईमेल जाती है, मैसेजेस जाते हैं, इस वक्त से इस वक्त के दौरान आपको एक आवाज़ आने वाली है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो चले जाएं या कुछ भी करें। यानी वो पहले प्रिपेयर करके करते हैं, क्यों? कि उनको पता है कि इंसानियत यही है। तो ये चीज़ें उनको तरक्की देती हैं। हम सोचते हैं ना कि उनका कुफर उनको तरक्की दे रहा है, नहीं, डिसिप्लिन, चीज़ों की तैयारी और बाकी चीज़ें। अल्लाह उम्मते मुस्लिमा के लिए भी ये चीज़ें आसान कर दें, और इसी से फिर दिल खट्टे होते हैं हमारे। इसी वजह से हम एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं आपकी, दूसरा कुछ और कर रहा है, क्योंकि ना उस बेचारे को पता है ना आपको पता है। तो ये सब चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह ग़ज़वे उहद से। आगे जी 17 रुकू 156 से 171। अब ये बिल्कुल आप कह लें तबसरे हैं, अखबारों में या टीवी स्क्रीन्स पे लोग किसी भी वाक़े के बाद तबसरे करते हैं ना। कुछ लोगों के तबसरे नेगेटिव होते हैं, कुछ के पॉजिटिव है। क्योंकि अभी तो हम बहुत जल्दी में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब आप ये डिटेल में पढ़ते हैं आप हैरान होंगे, अल्लाह और रसूल का जितना भी तबसरा गज़वे उहद पे है ना, वो पॉजिटिव है। फिर क्या हुआ? नो वरीज, गम ना खाओ, ला तहिनु वला ये वो। लेकिन जो गैरों के होंगे, जो मुनाफिकीन थे, वो फिर हिम्मतें तोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए, नेगेटिव हालात जब भी आएंगे तो आप उस पर कभी भी बुरा कमेंट नहीं देना। बी पॉजिटिव ऑलवेज, डोंट बी नेगेटिव। तो मोमिन के लिए अल्लाह के रास्ते की मौत दुनिया व माफी हाथ से बेहतर है। और आपको एक बार फिर आपके प्यारे रब की तरफ से पुकारा जा रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू। ऐ ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कुफर किया, और अपने भाइयों के हक में, जबकि वो सफर में हो या जिहाद में हो, कहा कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह ताला इनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ताला ही जिंदा करता है और मारता है, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देख रहा है। तो काश नहीं कहना चाहिए, लव का दरवाज़ा खुलता है तो हसरतें शुरू होती हैं। कसम है, अगर अल्लाह की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो, तो बेशक अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। बिल यकीन, ख्वाह तुम मर जाओ या मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह ताला ही की तरफ किए जाओगे। अल्लाह की रहमत के बायस आप इनके लिए रहम दिल हैं, और अगर आप बदजुबान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। बस आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तग़फार करें और काम का मशवरा इनसे किया करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। कितना प्यार आ रहा है अल्लाह को गलती करने वालों पर। नबी को तो पहले से कह रहे हैं देखिए इनको डांटना नहीं। देखिए कभी बच्चे से गलती हो जाती है ना, उसने बाप की कोई चीज़ तोड़ दी, अब बाप घर आने वाले हैं, बच्चे की जान पे पड़ी हुई है, माँ को भी फिक्र है, वो मियाँ को पहले से कहती है अब उससे कुछ गलती होगी आप डांटिएगा नहीं, रिपोर्ट कार्ड ही अच्छा नहीं आया, और बच्चा डर है मामा अब्बू के साइन कराने हैं। अब माँ कहती है अब्बा जी ने जो ही रिपोर्ट कार्ड देखी उन्हें कहना मेरे पैसे ज़ाया करा दिए, फेल हो गए, वो हो गए। तो माएँ क्या करती हैं, पहले से तसलियाँ दे देती, अच्छा छोड़े ना बच्चा ही है ना, अच्छा कुछ नहीं होता। अब ये तो माँ और बाप के नाते से जो हम सब देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन आयतों में ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी को कह रहा है देखें इनसे गलती हो गई, इनका नया नया काम है, अभी दूसरी तो जंग थी। इससे पता चलता है अच्छे लीडर अपने लोगों के साथ गुस्सा नहीं करते, ताने नहीं देते। देखिए समझाना और बात है, उस काम को आइंदा ना किया जाए प्यार और मोहब्बत से बताना और बात है, लेकिन स्टाइल टॉन्टिंग हो, हिम्मत हारवाने वाला हो, ये दुरुस्त तरीका नहीं। तो बच्चे हों या बड़े हों, आपकी बहुएं बेचारी जब नई नई आकर किचन संभालती हैं, तो खुदा के लिए सासों को कहूंगी कि आप भी जरा हाथ हौला ही रखा करें। क्या हुआ अगर उस बेचारी से दूध उबल गया और अगर रोटी जल गई और खाने में नमक कम पड़ गया, खुशी से खाइए। आज जिन लोगों की ट्रेनिंग के दौरान आप सब्र करेंगी ना, कल आप उसका फल खाएंगी। ये जो सब्र का फल मीठा है ना, ये सासों को अपने दिल पे लिख लेना चाहिए, कल फिर वही खाएंगे। वरना फिर एक वक्त आएगा बहू के कि अम्मी मुझे तो पकाना नहीं आता, आप भी पकाइए। और कुछ बहुओं ने ये काम किया फिर सासें ठीक हो गई, टोकना छोड़ गई कि चलो कुछ तो करती है। वो एक सास थी बेचारी बर्तन धोते हुए टोक रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, तुम पानी बहुत लगाती हो, साबुन इतना जाया कर दिया, नीचे कीचड़ कर दिया। एक दो दफा उस बच्ची ने सब्र किया, बाद में खड़ी होगी कहेंगे अम्मी मुझे नहीं धोने आते आप धोइए, फिर सास ठीक हो गई, फिर नहीं टोकियाँ। ये जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, ये भी ठीक नहीं होता। बहरहाल अल्लाह की रहमत के बायस आप इन पर रहम दिल है। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी का किरदार कितना खूबसूरत था। फबीमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम, इसी पे किसी ने कहा ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। लीडरशिप निभाना ये आसान काम नहीं है, लीडर की जुबान नरम होनी चाहिए, निगाह बुलंद होनी चाहिए, बड़े बड़े मकासिद नजरों में हो और दिल का भी नरम हो। क्या हुआ, फॉर गिविंग फॉर गेटिंग हो ताकि लोग उसके साथ चले। आपने नोट किया कुछ लोगों के साथ टीम्स क्यों नहीं बनती, 10 साल बाद भी देखे तो अकेले ही लगे हुए हैं बेचारे, टुन 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 टुन, वो लगने नहीं देते। क्यों नहीं कुछ सासों के साथ बहुएं रहती है, शामत आ गई सासों की, इसलिए नहीं रहती कि सास है ही नहीं किसी को साथ लगाने वाली। वो शुरू में देखेगी बहू, 1-2 साल बाद में कहेगी इनकी तो आदत है, मियाँ साहब से कहेगी या मुझे इधर रखें नहीं तो मुझे फारिग करें, अलग हो जाएंगे तो अकेले बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, आए बहू नहीं है बेटा नहीं है। आप उनको काम कौन सा करने दे रहे हैं, आप उनकी मर्जी कौन सी मान रहे हैं, आपकी गलतियों पे वो कितना को सब्र करें। तो बड़ों को बुजुर्ग होना चाहिए। लिखिए, कुछ लोग बड़े तो होते हैं मगर बुजुर्ग नहीं होते, बुजुर्ग बनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बड़ी इज्जत भी देगा। फिर आगे तसलियां देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए, हर खयानत करने वाला खयानत को लिए क़यामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म ना किए जाएंगे। आयत नंबर 162 से, क्या पस वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के दर पे है इस शख्स जैसा है जो अल्लाह की नाराजगी लेकर लौटता है, और जिसकी जगह जहन्नुम है वो बदतरीन जगह है। अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं, इनके अमाल को अल्लाह ताला बखूबी देख रहा है। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है, नोट करिएगा, वाहत नेमत है जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है एहसान की सूरत में। कैनी में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम इस जैसी दुगनी पहुंचा चुके थे, तो ये कहने लगे ये कहाँ से आ गई? गजवाए उहद और बदर का तकाबुल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये खुद तुम्हारी तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई, वो सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या कुफ्फार को हटाओ। तो वो कहने लगे अगर हम लड़ाई जानते होते तो ज़रूर साथ देते। और वो इस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर के बहुत नज़दीक थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जिनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए, इनको हरगिज़ मुर्दा ना समझे, बल्कि वो जिंदा हैं। अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने फजल जो इन्हें दे रखा है, इससे वो बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों के बारे में जो अब तक इनको नहीं मिले, इनके पीछे हैं, यूं कि अब इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो खुश होते हैं कि अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। ये वो आयतें होती थी जिसको देख कर सहाबाए कराम जिहाद का शौक जाहिर करते थे, और उनको मैदान जंग में जाना इतना खुश करता था शायद जितना आज किसी को चकी चीज या किसी खाने की जगह पे जाने का शौक ना हो। तो आप देख रहे हैं कि पांच आयतें इस हिस्से में ईमान से मुतल्लिक हैं। 156 आले इमरान। टॉपिक क्या है? हर जी रूह का मौत का वक्त मुकर्रर है, और जगह भी, यानी ना सिर्फ ये कि हमारी मौत का वक्त मुकर्रर है बल्कि जगह भी। सोचिए मुझे मौत कहाँ आएगी, मैं कब मरूंगी, कब इस दुनिया से हटूंगी, क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। फिर इसी तरह से 160 आले इमरान। आजमाइशों में तवक्कुल करना है, तवाकुल नहीं। फर्क क्या होता है? तवाकुल और तवक्कुल का फर्क आप सोचे, कल पूछिएगा। आज आपका ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ एक्शन है कि तवक्कुल और तवाकुल में क्या फ़र्क है। फिर आयत 164 आले इमरान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसफ़ीहिम रसूला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आप इंसानियत के लिए एहसान वाली एक चीज़ रखा, तो ये वाहिद नेमत है जिसका एहसान जतलाया गया, और वह नबी का वजूद। हम उम्मत मुस्लिमा कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह हमें इसका एहसास दिला दे। आयत 166 से क्या मैसेज है? आजमाइशें आती तो हैं मगर अल्लाह के करीब करने के लिए। और आले इमरान 167, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और, यही तो निफाक है। खुलासा क्या निकला इन सारी बातों का, क्योंकि अब गजवा उहद का टॉपिक रैपअप हो रहा है। अल्लाह ताला ईमान वालों को कुफार से अलग देखना चाहता है, क्योंकि हम भी अच्छी और बुरी चीज़ें अलग रखते हैं ना। कीमती चीज़ें अलग होती हैं, सस्ती कम होती हैं, अलग होती हैं। तो अल्लाह नहीं चाहता कि उसके ईमान वाले कुफार में या मुनाफिकीन में या फासिकीन में ही घुलते मिलते रहे हर वक्त। यू आर स्पेशल, तुम्हारे पास एक स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसी तरह जो लोग गैर मुस्लिमों की अंधी तकलीद करते हैं, पैरवी करते हैं, ये एहसासे कमतरी की अलामत है, क्योंकि आपको अपने दीन पर खुद फख्र नहीं है। तो सर उठाकर जिए। फिर फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या है? कि अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते ही रहना है, चाहे हालात कैसे भी हों। कुफार से दिली दोस्ती नहीं करनी, हाँ ताल्लुकात में मामलात और हमदर्दी का ताल्लुक रखा जाएगा। आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से रहना है, क्योंकि इत्तफाक और इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह हम मुसलमानों को आज इसी का एहसास दिला रहा है। अल्लाह करे कि हम इसको सीखने वाले और समझने वाले बन जाएं।